SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। स्लीप डिसऑर्डर दुनिया भर में समस्या बना हुआ है। कुछ लोग अगर 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तभी उन्हें दिन में सुस्ती और नींद आती है, तो फिर कई जिन्हें रात भर नींद नहीं आती। एक नींद विकार आपके पूरे स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। दुनिया भर में इस वर्ष 15 मार्च को स्लीप डे है, यानी नींद संबंधित विकारों को जानना और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना। तो बस इसी सिलसिले में बात की है मोनैश यूनिवर्सिटी की डॉक्टर प्रेरणा वर्मा से, जो खास तौर से स्लीप हेल्थ और वेलबींग के ऊपर काम करती हैं। तो वो बताती हैं,
अगर आप किसी एक हेल्थ कंडीशन की तरह देखें, जैसे कि कोई खांसी जुकाम हो गया या कोई और बीमारी होगी, स्लीप डिसऑर्डर्स भी उसी की तरह होते हैं। जब आपकी नींद जो है वो खराब हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बट जब भी आप कहते हैं आपकी नींद खराब हो गई है और एक समय के लिए खराब हो गई है, क्योंकि वैसे तो आए गए किसी ना किसी दिन सभी की नींद खराब हो जाती है, बट जब एक ड्यूरेशन के लिए आपकी नींद खराब होती है तो उसको हम डिसऑर्डर्ड स्लीप बोलते हैं। बड़े सारे रीजंस होते हैं, बड़े सारे तरह के होते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स।
बड़े ही नाम सुनते हैं, स्लीप एपिनिया, RLS है, नार्कोलेप्सी है, तो क्या है वो?
हाँ जी, कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी जो सबसे कॉमन होते हैं, सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। एक तो स्लीप डिसऑर्डर जिसको कहते हैं इंसोम्निया, हिंदी में इसको कहेंगे नींद ना आने की बीमारी। आप बिस्तरे पे जाते हैं, आप सोने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल इंसान को लगेगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, पर आप 1-1 घंटे तक लेटे हुए आपको नींद नहीं आई, या आपको नींद आ गई पर आप बीच में रात के उठ गए फिर वापस आपको नींद नहीं आ रही है, या सुबह सुबह आप बहुत जल्दी उठ गए। तो ये सबसे कॉमन बीमारी है, इसको हम कहते हैं इंसोम्निया। दूसरी जो अभी आपने बोला था अनिता जी, स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, ये भी एक बड़ी कॉमन बीमारी है, और इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो ये होता है, या बहुत खराब है आते रात, तो वो स्लीप एपनिया होता है। वो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका गर्दन है, बीच में आप जब सोने जाते हो जब वो रिलैक्स हो जाता है आपका गर्दन और आपका गला, तो आपको सांस अच्छे से नहीं आता। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, इतना डरावना नहीं है, बट ये हाँ, बट इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, कि आपकी सांस रुक गई है सोते सोते, तो आपको खराटा लेना पड़ रहा है, या आपको पता भी नहीं चलेगा बट आपकी नींद खुल जाएगी, बार बार खुलती रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता होगा कि आप रात में 10 दफा उठ गए, बट आपका दिमाग थोड़ा सा उठ जाएगा कि आप वापस से सांस लेना शुरू कर दे। अगेन सुनने में थोड़ा सा
मतलब ये जो जी मैं वही समझना चाह रही थी कि ये जो खर्राटे आते हैं, और कई बार उन्हीं खर्राटों से उस इंसान की नींद खुल जाती है क्योंकि उसको सुनाई दे रखते हैं, फिर वो करवट लेते हैं, फिर वो सो जाते हैं।
वो हाँ, वो एक सिम्टम है स्लीप एपनिया का, जरूरी नहीं कि हर किसी को खर्राटे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको स्लीप एपनिया, बट एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी को बहुत खर्राटे आते हैं, लगातार आते रहते हैं, तो उनको इसके लिए एक स्लीप फिजिशियन होते हैं, या रेस्पिरेटरी फिजिशियन जिसको कहते हैं, उसके पास जाकर के आप टेस्ट करा सकते हैं। एक जो और बहुत कॉमनली हम देखते हैं, स्पेशली ना जो बड़े सारे ऐसे जॉब्स करते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गई, या डॉक्टर होते हैं, या वेयर हाउस में काम करते हैं, या ट्रक्स चलाते हैं, तो जो कभी रात को काम कर रहे होते, कभी दिन को काम कर रहे होते, इनमें हम एक डिसऑर्डर देखते हैं जिसको कहते हैं शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, क्योंकि वो शिफ्टों में काम कर रहे हैं ना अलग अलग, तो उनकी नींद भी खराब होती है, और क्योंकि वो शिफ्टों में काम कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो दोनों मिला करके बिल्कुल जैसे इंसोम्निया के आपने आपको मैंने बताया सिम्टम्स है कि नींद नहीं आती है, वैसे से एक बीमारी हो जाती है, या तो उन्हें नींद नहीं आती है, या उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है, या वो क्या कहते हैं उनको लगता है कि वो कहीं पे भी बैठेंगे तो सो जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन एक डिसऑर्डर होता है। फिर आपके और भी कई तरह के होते हैं, नार्कोलेप्सी एक होता है जिसमें आप कहीं कभी भी आपको नींद आ सकती है, तो बड़ा इजीली दिख जाता है क्योंकि कहीं पे भी आपको नींद नहीं भी आनी चाहिए, आप बैठे नहीं हो, आप बिस्तरे पे लेटे नहीं हो पर आपको नींद आ गई, या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसकी आप बात कर रही थी RLS, वो होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है पैरों की सोते हुए, या बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है सोते हुए। तो ये तो जो दोनों बीमारियां हैं इतनी कॉमन नहीं है, बट जैसे स्लीप एपनिया आप जाकर के डायग्नोज करवा सकते हैं, वैसे ही नार्कोलेप्सी और आरएलएस भी आप डायग्नोज करवा सकते हैं और आराम से उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है।
अच्छा, तो ये जो नार्कोलेप्सी है ये क्या जेनेटिक हो सकती है?
इसके बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन्स है वो अभी भी डिबेटेबल एक तरह से, कि अभी भी लोग देख रहे हैं एज अ साइंटिस्ट वगैरह कि ये क्यों ऐसा होता है। तो एक जेनेटिक कंपोनेंट डेफिनेटली है इसमें, कि एक फैमिली में अगर किसी को कभी हुआ हो या कभी है तो आपके होने के भी चांसेस ज्यादा है, और अदरवाइज ब्रेन फंक्शनिंग में भी देखा गया कि थोड़े बहुत कुछ होते हैं चेंजेस जिसकी वजह से कई लोगों को नार्कोलेप्सी होता है।
यहाँ पर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि इतने सारे जो डिसऑर्डर्स हैं क्या ये उम्र से भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बुजुर्ग हो जाते हैं तो बोलते हैं कि उनकी नींद कम हो गई है या खराब हो गई है।
हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा। हर एक तरह से हर जो डिसऑर्डर है कुछ उम्र में कई लोगों को ज्यादा उसको होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे अभी हम स्लीप एपनिया की बात कर रहे थे तो वो यूजुअली जो है 40-50 साल की उम्र के बाद होना शुरू होता है, क्योंकि ओल्डर लोगों में वो ज्यादा देखा जाता है। और फिर इंसोम्निया की हम बात कर रहे थे जो सबसे कॉमन है, वो भी देखा गया है कि उम्र के साथ होता है। जैसे औरतें जो होती है जब उनके बेबीज हो जाते हैं या जब वो फर्स्ट टाइम मदर्स बनती हैं तब काफी कॉमन होता है, फिर जब मेनोपॉज होता है तब काफी कॉमन होता है क्योंकि आपकी बॉडी हीट अप कर रही है, आप सोने जा रहे हो, आपके हार्मोन चेंज हो रहे हो। फिर जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं ना तो आपकी बॉडी की जो वो होती है कैपेसिटी होती है सोने की वो थोड़ी खराब हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम नींद चाहिए, बस ये कि आपकी बॉडी आपको बार बार जगा देती है। उस हिसाब से जैसे अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो स्लीप डिसऑर्डर के कई कारण हो सकते हैं, तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पकड़ा, क्योंकि मैं किसी को ये भी डराना चाहती कि अरे आज ये नहीं कि आज आप 7 घंटे नहीं सो पाए तो कल डॉक्टर के पास चले गए, हर किसी के साथ होता है, कभी खराब हो जाती है। बट एक बहुत अच्छा और सिंपल वे डिस्क्राइब करने का ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बार बार ये हो रहा है, आज भी आपकी नींद खराब हो गई, 2 दिन बाद भी आपकी नींद खराब हो गई, अगले हफ्ते भी फिर आपकी नींद खराब हो गई, अगर एक रिपीटेडली एक रीजन हो रहा है तो वो पहला साइन है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा साइन है अगर आपके साथ कोई बेड पे सोता है, जैसे आपके वाइफ हो या हस्बैंड हो या पार्टनर हो, और वो आपको कहते हैं कि रात को आप बहुत खराटे लेते हो या आप रात को ऐसा लगता है जैसे रात को आपकी नींद बहुत खराब हो रही है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आपके पैर मूव कर रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो वो एक दूसरा साइन है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप कोई दवाइयां ले रहे हो क्योंकि उसका भी इफेक्ट पड़ता है तो एटलीस्ट कोई बुराई नहीं है एक दफा एटलीस्ट डॉक्टर से पूछने में के लिए।
जी, क्योंकि नींद हमारे लिए आवश्यक है, और अगर वो नींद पूरी नहीं मिल रही है तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से दोनों ही तरफ से स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़ेगा।
हाँ जी, और हम भी अपनी रिसर्च में देखते हैं कि स्लीप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक रीजन है जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। मतलब आप कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, कोई भी हेल्थ कंडीशन पकड़ लीजिए, उसका आपकी स्लीप से कोई ना कोई लेना देना होगा। और अगर आप अच्छा सो रहे हैं तो आपका जो रिस्क है उस बीमारी को होने का वो थोड़ा कम हो जाएगा।
हमें नींद अच्छी आती रहे तो उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
तो 3 चीजें मैं कहना चाहूंगी कि जो आपको अच्छा सोने में मदद करेगी, जिसमें से सबसे पहला और मेरे हिसाब से शायद सबसे जरूरी भी है, जिसको हम बोलते हैं स्लीप रेगुलरिटी। कि मतलब अगर आप शिफ्ट वर्क जैसा काम नहीं कर रहे कि आपको सुबह रात या किसी भी समय काम करना हो, अगर आप वैसा काम नहीं कर रहे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन एक ही समय पे उठे और हर दिन एक ही समय पे सोने जाए, क्योंकि हमारे शरीरों को हमारी बॉडीज को एक रूटीन बहुत अच्छा लगता है। तो वो रूटीन होने से आपकी नींद जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरा है लाइट। तो जब आप ब्राइट लाइट में होते हो सुबह में तो आपकी अलर्टनेस बहुत बढ़ती है, आपको अच्छा ज्यादा महसूस होता है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। पर जब आप रात में वही लाइट यूज करते हो तो उससे आपकी नींद पे फर्क पड़ता है। तो हमेशा याद रखिए कि सुबह में जितना लाइट हो सके ले सके, और रात में एक एक्सपेरिमेंट की तरह रात में थोड़ा सा लाइटों को डिम करते हैं सोने जाने से 2-3 घंटे पहले, और आपको रियलाइज होगा 1-2 हफ्ते अगर आप ये ट्राई करेंगे कि उसका कैसा इम्पैक्ट होता है, आपको कितनी अच्छी नींद आती है. तो वो हो गया दूसरा लाइट. तीसरा जो मैं कहूंगी वो ये है कि थोड़ा सा रात को 1-1.5 घंटा सोने से पहले अपना टीवी देखना थोड़ा बंद कर दें. फोन जो हम सब चलाते हैं टिकटॉक इंस्टाग्राम सब देखने के लिए, वो थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि वो सब चीजें आपके दिमाग में रहती है, फिर आप उसके बारे में सोचते रहते हैं कई दफा.
जी, क्योंकि नींद हमारे लिए आवश्यक है, और अगर वो नींद पूरी नहीं मिल रही है तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से दोनों ही तरफ से स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़ेगा. प्रेरणा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस विषय की ओर हमारा ध्यान दिलाया है.
थैंक यू.